शांति। अभी का टॉपिक है रूहानी एक्सरसाइज। आज का वरदान किसको याद है, क्योंकि आज का ये टॉपिक वरदान से ही लिया गया है। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट यानी कि बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव, और इसका विश्लेषण क्या था, तो उसमें एक्सरसाइज का अर्थ बताया। क्या बताया? रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकार कर्मयोगी और अभी अभी विश्व सेवाधारी। तो बाबा ने मीनिंग बताई कि जो बाबा हमें कह रहे हैं कि रूहानी एक्सरसाइज द्वारा बोझ को खत्म करो, तो रूहानी एक्सरसाइज से बाबा का क्या तात्पर्य है वो अर्थ बता दिया कि अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ, अभी अभी साकार कर्मयोगी बनकर कर्म करो और अभी अभी पूरे विश्व को, ग्लोब को सकाश दो, पूरे विश्व की सेवा करो, विश्व सेवाधारी बन जाओ। और ये से एक्सरसाइज कब करनी है, तो बताया ऐसी एक्सरसाइज रोज करो। और रोज करेंगे तो क्या होगा, तो कहा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और जब व्यर्थ समाप्त हो, जब माशुक की तरह डबल लाइट बनो, तो जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, जोड़ी कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। और इसलिए रूहानी माशुक कहते हैं आशिको, आशिको समान बनो, समीप बनो। हाँ, ऐसे फील किया हमारा माशुक हम आशिकों को कहता है। हाँ, समान बनो, समीप बनो। तो जब हमारा रूहानी माशुक हमें कहे कि समान बनो, समीप बनो, तो इससे क्या तात्पर्य है? समान बनना माना क्या, समीप बनना माना क्या? जब हम परम धाम में थे, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इस काल चक्र में प्रवेश करने से पहले हम पिता परमात्मा के साथ उसके ही घर में उसके ही समीप थे और उसके ही समान थे। अब जब हम उसके ही समान थे तो कैसे थे? जैसा वो था। तो वो कैसा है, वो कैसा है? क्योंकि हम उसके समान थे माना वो कैसा है, तो फिर मैं बता सकती हूँ कि मैं कैसी थी वहां पे। तो क्या है वो कैसा है वो? गुणों और शक्तियों का सागर है। और क्या है? रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु और सच्चित आनंद स्वरूप। इसीलिए देखो जब 1936 की बात है कि जब ये यज्ञ की स्थापना हुई है, कि जब ब्रह्मा बाबा का अस्तित्व नहीं था, दादा लेखराज का था और उनको साक्षात्कार होने आरंभ हो गए थे। और जब घर में पोते की छठी के लिए तार पहुंच गई थी और उस तार के अनुसार घर लौटे थे, तो गुरु का सत्संग चल रहा है, वहां बैठे, लेकिन न जाने कौन सी स्फूर्णा हुई, वहां से उठ गए, जाके दूसरे कमरे में बैठे। और वहां पर क्या घटना घटी, परमात्मा का इस कल्प में प्रथम अवतरण का दिवस, जिसकी साक्षी रही उनकी बहू। और उनके ही द्वारा पता चला कि परमात्मा जब धरा पर आए, पहली ध्वनि क्या उच्चारण की, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत सारे परिचय की बातें हम सुनाते हैं, लेकिन जब भगवान ने अपना परिचय दिया तो सबसे पहले अपने आप को क्या बताया, मैं आनंद का स्वरूप हूं। और क्या हूं, प्रकाश स्वरूप हूं और ज्ञान स्वरूप हूं। तो जो किसी ने यहां से कहा सच्चित आनंद, क्या अर्थ होता है सच्चित शब्द का? सत शब्द का अर्थ क्या होता है? सत और सत्य में अंतर है या दोनों एक है? एक है सत, जैसे सच्चित आनंद बोलते हैं, और एक है सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें सत्य बोला, सत्यम बोला, एक है सत्यमेव जयते। तो सत और सत्य, इन दोनों में कुछ अंतर है कि एक ही है? सत का अर्थ होता है शाश्वत, पर किसका शाश्वत? अस्तित्व, सत माना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, उपस्थिति, वजूद, उसको कहते हैं सत, कि वजूद है, एक अस्तित्व है, एक एंटिटी है। और वो कैसी है, कैसी है वो? प्रकाश वाली। यही तो बताते ना हम कि परमात्मा का अस्तित्व है, तो कैसा अस्तित्व है? तो प्रकाश का स्वरूप। तो वो अस्तित्व प्रकाशमान है। और फिर चैतन्य, हाँ, सत चित आनंद, तो चित माना चैतन्य, चैतन्य माना लाइव और जीता हुआ। और सरल करेंगे, सब सही है पर और सरल, और सरल। परमात्मा जीवात्मा है क्या? परमात्मा जीवात्मा है? चित माना चैतन्य और चैतन्य माना ही ज्ञान। जो चैतन्य होगा उसी को तो अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। पत्थर को होगा क्या ज्ञान? पत्थर का भी अस्तित्व है, पहाड़ का भी अस्तित्व है, पेड़ का भी अस्तित्व है, लेकिन उनको ज्ञान है क्या पेड़ हुए? उनको ज्ञान है कि पेड़ है और ये अस्तित्व है? बाबा कहते ना, कई बार बीज रूप का उदाहरण देते ना बाबा, कि मैं बीज रूप हूं पर मैं चैतन्य हूं, वो दुनिया के जो पेड़ होते हैं उनके भी बीज होते हैं और उसमें से भी पेड़ निकलता है, पर उस बीज को ये पता नहीं होता है कुछ भी, अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन शिव बाबा को ज्ञान है। तो चैतन्य का सरल अर्थ है ज्ञान, और उसका भी सरल अर्थ क्या है, उसका भी सरल अर्थ क्या है कि जैसे एक पत्थर ऊपर से गिरता हुआ नीचे गिरे, तो उसके लिए कहेंगे क्या चक्कर आकर पत्थर गिर गया, लेकिन इंसान गिरे तो क्या कहेगा, उस समय तो गिर के शायद वो बेहोश भी हो जाए और बाद में उसको होश आए तो कहेगा सब मुझे बता रहे थे कि आपको चक्कर आया और गिर गए और आप बेहोश हो गए, तो उसको वो पता ही नहीं है सब क्या हुआ क्योंकि वो तो बेहोशी में चला गया, दूसरों ने देखा और जब उसको होश आया तब बताया। तो ज्ञान का मतलब है होश, और जब बेहोशी थी मतलब अज्ञानता थी, उस समय क्या थी अज्ञानता थी। तो होश में रहना ये है चैतन्य की निशानी, चित्त की, सत चित आनंद कह रहे ना हम। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद माने क्या होता है, न सुख न दुख। सुख और दुख किस आधार से भासता है, देह के आधार से। तो देह के आधार से आनंद की अनुभूति नहीं है, और इसीलिए शब्द आता है अति इंद्रिय सुख। जब इंद्रियों से परे चले जाए वो जो स्थिति है उसको नाम दिया अति इंद्रिय। पर इंद्रियों से परे वाली स्थिति माना ही अपने आप की होश की स्थिति। अपने आप की होश की स्थिति मतलब मैं एक अस्तित्व है, अस्तित्व प्रकाश वाला अस्तित्व जिसको ज्ञान है, वो ही दशा आनंद की दशा है, वो ही दशा आनंद की दशा है। और उस दशा में परमात्मा सदा रहता है, हम हमेशा होश में नहीं रहते। हम कब कब होश में रहते हैं और कब कब बेहोशी में रहते हैं, जैसे कहा कि काल चक्र में आने से पहले हम उसके समान थे, तो हमने पहले उसको देखा कि वो क्या था, तो वो सत चित आनंद, हम भी वैसे ही थे और हम उसके करीब थे उस समय। बाबा कहते ना कि सबके सेक्शन होंगे और मेरे बच्चे मेरे करीब होंगे, बाकी वाले दूर दूर होंगे। और फिर हमने वहां से, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे में कर्म करने का संस्कार है, और इसलिए हम उतर के आ जाते हैं, तो हम आके काल चक्र में प्रवेश करते हैं। काल चक्र में प्रवेश करना माना ही देह को धारण करना। तो हमारी स्थिति जब हम पहली बार उतरते हैं इस सृष्टि चक्र में, देह को धारण करते हैं, कौन सी स्थिति होती है हमारी, देह अभिमान की या देही अभिमान की, कौन सी स्थिति होती है, हमारी स्थिति होती है देही अभिमानी की। हमने वहां कर्म किए या नहीं किए, हम जब उतरे सतयुग में कर्म किए या नहीं किए, एक क्यों सिर हिला रहे कि नहीं, था। देखो हमने क्या कहा, आत्मा नीचे उतरती है क्योंकि उसमें कर्म करने के संस्कार है। जब कर्म करने के संस्कार है और उसलिए ही उतरे हैं, तो हमारा प्रश्न है हमने कर्म किए या नहीं किए। कर्म किए, आज भी हम कर्म ही कर रहे हैं। क्या अंतर उसके उस समय के कर्म में और अभी के कर्म में, अंतर क्या? वहां के जैसे बाबा ने हमें सिखाया है कि वहां के कर्म, अभी भी यहीं से उत्तर आया था, अकर्म एक दूसरा भी उत्तर आया था, हमने कर्म नहीं किए, हमने अपनी प्रारब्ध खाई है ना। अर्थात क्या, इसका अर्थ क्या है कि हमने प्रारब्ध खाई या हमारे कर्म अकर्म थे, इसको सरल भाषा में क्या कहेंगे? इसको सरल भाषा में कहेंगे कर्तापन का भान नहीं था, मैं करता हूं ये भान नहीं था, अकर्ता की स्थिति बनी हुई थी। और अकर्ता की स्थिति होने के कारण से जो हमने कर्म किए वो अकर्म कहलाए, इसका भी सरल अर्थ क्या? क्योंकि सब शब्दों तक नहीं रह जाना है हमें, इसका भी सरल अर्थ क्या? हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि पहले दिन का जो हमारा लेसन होता है आत्मा का, और ये ब्रह्मा कुमारियों के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। आत्मा में तीन फैकल्टीज होती है, हमारा पहला लेसन कोई बता सकता दुनिया का कोई भी व्यक्ति? ये ब्रह्मा कुमारियों का, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, कि जिसमें हम कहते हैं कि आत्मा के पास तीन फैकल्टी है, मन बुद्धि संस्कार। और संस्कार क्या है, तो क्या कहते हैं संस्कारों को हम, कि आत्मा जब भी कर्म करेगी उसकी छाप आत्मा पर ही पड़ेगी, और छाप से मतलब रिकॉर्डिंग होगी, जो भी कर्म करेंगे आत्मा उसको रिकॉर्ड कर लेगी, जैसे यहां पर अभी बोला जा रहा है उधर रिकॉर्ड हो रहा है। पर यहां पे जरूर नहीं कि हर बार रिकॉर्ड किया जाएगा, डिपेंड कर रहा है कि आपने व्यवस्था रखी या नहीं, लेकिन आत्मा के पास ऑटोमेटिक व्यवस्था की हुई है, कोई भी कर्म करे और उसकी रिकॉर्डिंग उस पर बनेगी। तो फिर अकर्म क्यों बोला, जब रिकॉर्डिंग हुई फिर अकर्म क्यों बोला? उसका कारण, पानी पे लकीर खींचो, पानी पर लकीर खींचो कितना समय टिकेगी? खींचते खींचते ही मिटती जाती है वो, खींचते खींचते ही मिट जाती है, खो जाती है। लेकिन पत्थर पर लकीर खींचो तो टिक जाएगी, और फिर दोबारा उस पर खींचो तो वो गहरी होगी, और खींचो तो। तो हमारे जो कर्म, जिसको हमने कहा कि अकर्म थे, अर्थात चूंकि हम अकर्ता भाव में थे इसलिए हमने जो कर्म किया उसकी छाप आत्मा पर पड़ी जरूर, पर कैसी वाली? पानी पर लकीर की तरह, कि पड़ी भी और चली भी कहीं, और इसलिए चित्त शुद्ध का शुद्ध ही रह गया, चित्त के ऊपर उन लकीरों की परतें नहीं जमी। लेकिन या दूसरा उदाहरण, जैसे दर्पण होता है, दर्पण के सामने चले जाओ छवि दिखाई पड़ेगी, हट जाओ छवि गायब, पकड़ के नहीं रखता वो, पकड़ के नहीं रखता, लेकिन कैमरा की फोटो प्लेट जो होती है, जो रील रहती है, पकड़ के रखता है, ठीक है। तो हमारे कर्म अकर्म थे क्योंकि अकर्तापन का भाव था, नेचुरल देही अभिमानी स्थिति थी। लेकिन समय के साथ साथ वो देही अभिमानी स्थिति का परसेंटेज कम कम होते होते जीरो पर पहुंच गया, और जहां जीरो पर पहुंचा वहां देह अभिमान की स्थिति जागृत हुई, अर्थात कर्तापन जागृत हुआ। और उस कर्तापन में मैंने जो भी किया, मतलब कर्म, उस कर्म की छाप आत्मा पर पत्थर पर लकीर की तरह छपती गई छपती गई। तो यही बोझ आत्मा पर चढ़ा हुआ है और अब इसको उतारना है, क्योंकि जब बोझ चढ़ गया है उसके ऊपर, जैसे दर्पण तो मुझे दिखा सकता है छवि, लेकिन दर्पण के ऊपर खूब धूल मिट्टी चढ़ गई हो तो अब वो मेरी छवि दिखा सकता है मुझे? नहीं दिखा सकता है। और इसलिए इस बोझ को उतारने की जरूरत है। ये बोझ उतर जाए, मैं अभी अपनी छवि देखने जाऊंगी, वो सच्चित आनंद वाली छवि होगी मेरी। तो मुझे लाना नहीं है उसको। जैसे एक कुएं से कुआं, मुझे पानी चाहिए तो कुआं खोदेगा व्यक्ति, तो क्या करेगा? कुआं खोदना माना पानी का सोर्स तैयार करना। अब पानी का सोर्स हम तैयार कर रहे हैं या सोर्स है पर उसके ऊपर कुछ बाधा है, मिट्टी की पत्थरों की बाधा है, उसको हम क्या कर, जिसको कुआं बनाना हम क्या करेगा, वो उस मिट्टी को हटाएगा, उन पत्थरों को हटाएगा। एक समय आएगा कि वो उतनी मिट्टी उतने पत्थर हट गए कि झरना पानी का बाहर फूट कर आ गया। वो तो वही था ना, हमने नहीं जाके पानी डाला, पानी तो भीतर में छिपा हुआ है, लेकिन ऊपर से मिट्टी है, ऊपर से पत्थर है, वो बाधा का काम कर रहे थे। और उसको जैसे ही हटाया, पानी का स्रोत मुझे दिखाई पड़ गया, उसका लाभ ले सकती। ऐसे ही इटली के एक प्रसिद्ध शिल्पकार हुए हैं, जिसको जिनका नाम है माइकल एंजेलो, बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण करते थे पत्थरों से। लोगों ने उसको पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे गढ़ते हो? उसका जवाब था, मैं नहीं गढ़ता हूं मूर्ति, मूर्ति तो उस पत्थर में पहले से ही विद्यमान होती है, मैं तो सिर्फ फालतू वाला हिस्सा हटा देता हूं और मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही बाबा जब हमें कह रहे हैं, हाँ, रूहानी माशुक आशिकों से कह रहे हैं, समान बनो, समीप बनो, तो कैसे? विधि बता रहा है, बोझ को समाप्त करो, मतलब तुम हो मेरे समान पहले से ही। समझ में आ रही बात? तुम पहले से ही मेरे समान हो, लेकिन समानता क्यों नहीं दिख रही है? ऊपर में बाधा बोझ है। तो कौन सा बोझ है? तो कहा, जहां से हमने द्वापर से कर्ता बन के कर्म करना आरंभ किया और इसलिए वो जो सारी परतें चढ़ी हुई है उसको हटाते चलो और उसकी विधि दे दी सुंदर सी। कैसे हटाओगे? तो कहा एक्सरसाइज करो, रूहानी एक्सरसाइज। अब इसको भी समझने के लिए पहले एक्सरसाइज क्या होती है उसको समझ ले। दुनिया की रीति से भी, शारीरिक रीति से भी डॉक्टर एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। तो क्या होती है एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में कहेंगे व्यायाम या कसरत? तो क्या होता है व्यायाम, क्या होता है कसरत, क्या होती है एक्सरसाइज? शरीर की देखरेख, और उस शरीर की देखरेख के नाम पे व्यायाम में होता क्या है? शरीर के अंगों को तनाना और सिकोड़ना, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। शरीर के एक एक अंग को एक स्थान पर जमे नहीं रहने देना, नहीं तो वो आजकल कौन सी बीमारी की तो फ्रोजन शोल्डर हो गया है, क्योंकि इस्तेमाल कर नहीं रहे अंगों का। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं रह गई। मशीनों को इजाद कर लिया, इन्वेंशन कर लिया है, मशीन काम कर रही है, तो हमारी शरीर रूपी मशीन, उसके पुर्जे एक जगह पर खड़े हो गए हैं, और जो चीज यूज में नहीं आएगी वो हम लूज करेंगे, अर्थात उसको जंग लगेगी और जंग लगने के बाद वो यूजलेस। और ऐसे ही हो रहा, फ्रोजन शोल्डर मतलब क्या होता है? यही होता है। हाँ, कई बार माताएं कहती है, अरे एक दिन बाई नहीं आती है ना, तो ऐसा लगता है निकाल दो, क्योंकि खुद करते हैं ना, हाथ तक चलते हैं बराबर से, फिर छोड़ दिया ना काम करना, तो अभी नहीं हो रहा है मेरे से, बोलते हैं ऐसे। जब तक चलाते रहते थे चल रहे थे, चलाना छोड़ दिया तो जैसे कि जंग लगती गई और अब वो मूवमेंट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे ही और क्या फायदे होते हैं, तो ये का मूवमेंट कराना शरीर के एक एक पुर्जे को, एक एक अंग को, इसको कहते हैं एक्सरसाइज। तो इस मूवमेंट से फायदा क्या होता है, शरीर के एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचता है। इसलिए व्यायाम कहां करना होता है? खुले में करना होता है। ये अलग बात है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण सभी को खुला मैदान नहीं मिलता, तो हम अंदर में ही कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक आदर्श व्यायाम जो होता है वो खुले वातावरण में किया जाता है, ताकि जो हम शरीर के एक एक अंग को हिलाएंगे तो उस एक एक अंग तक, एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक ऑक्सीजन, खुले में इसलिए कर रहे हैं कि बाहर से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, वो ऑक्सीजन वहां पर पहुंचे। सारी बीमारियां उस ऑक्सीजन की कमी के कारण तो है। आज अगर कोई कहता है कि कैंसर है किसी को, क्या होता है कैंसरस सेल माना? डेड सेल। और डेड सेल माना जिसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, उसी को तो डेड सेल बोला जाता है। तो व्यायाम माना एक एक अंग को ऑक्सीजन पहुंचे, और जिससे फिर ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो, श्वासोश्वास की प्रक्रिया भी खुलकर हो, मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो, मांसपेशियां अस्थियां मजबूत हो। ये सब फायदे होते हैं व्यायाम करने के। ये बात अलग है कि हम इसकी अज्ञानता में इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर इसके बहुत फायदे हैं और यही तरीका है तंदुरुस्त होने का। एक तो एक्सरसाइज, दूसरा प्रॉपर भोजन और तीसरा रेस्ट। श्रेष्ठ शरीर को स्वस्थ रखने के यही मूल मंत्र है। तो हम भोजन तो रोज दे रहे हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, भोजन रोज दे रहे हैं, अब एक्सरसाइज भी करनी है। और वो एक्सरसाइज शारीरिक अंगों की थी और ये है रूहानी एक्सरसाइज। तो उस रूहानी एक्सरसाइज में भी जैसे का अंगों को हिलाना होता है, यहां पे मन बुद्धि को दौड़ाना है। कहा ना अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। तो देखो इसमें खुलेपन का एहसास हो रहा है कि आत्मा देह के भीतर है, आत्मा देह के भीतर है, तो साकार में कर्मयोगी बनकर कर्म कर रहे हो, ऐसा विजुअलाइज करो। और कर्मयोगी माना, कर्मयोगी माना क्या, कर्म कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट किससे हैं, अर्थात कर्तापन को भूले हुए हैं, अकर्तापन के भाव में। कर्ता कौन है? तो देखो ये स्वच्छता की बाबा ने मेथड दी है कि कैसे रूहानी एक्सरसाइज से बोझ उतरता होगा। मन कभी कभी प्रश्न उठ करेगा ना, ऐसे कैसे बोझ उतर जाता है, तो ऐसे उतरता है। यहां पर भी क्या हो रहा है, फिजिकली भी ब्लॉकेज खुलते हैं क्योंकि एक एक कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो रास्ते में जितने भी ब्लॉकेज है वो साफ होते जा रहे हैं, वो कचरा बाहर निकल के फेंक दिया जाता है। सारे बीमारियों की जड़ तो यही है, वो जैसे कहते हैं ना बांसुरी होती है उसमें से बहुत स्वीट आवाज निकाली जाती है। किस शर्त पर? पूरी खाली है, हालो है, क्या बोलेंगे उस हालो को हिंदी में, खोखली है, पूरी आर पार है, वहां पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। ऐसे में वहां पे जो छेद है उसमें जो आप हवा फूंक दो सुरीली आवाज निकल कर आएगी, लेकिन उसके लिए शर्त है खोखलापन हो, वहां पे कुछ भी जमाव नहीं हो। ऐसे ही शरीरों में भी बीमारी की जड़ सारी आज वही है, बोलते उसको स्टेंट लगा, क्यों लगा, ब्लॉकेज था। कोई कोई हम देखते हैं वैद्य होते हैं तो बोले वो वैद्य है ना जैसे सामान को ऐसे हथौड़ी और ठोकते हैं ना, वो आपको ऐसे ठोक ठोक के आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोलता है और ठीक करता है, सुना होगा। हमने अभी अभी लेटेस्ट में सुना है कसौली गांव का कोई वैद्य है और बाकायदा आंखों से देखा ऐसे ठोकते हुए। हाँ, जो एनुअल मीटिंग में आई होंगी बहनें उनको पता होगा, नीचे एनुअल मीटिंग जब चल रही थी तो वैद्य को भी किसी ने बुलाया था और बहनें उनके पास जाके करवा रही थी और हमने बाकायदा खुद देखा। ऐसे तो सुनते हैं सिर्फ, लेकिन हमने उसको देखा कि उसके हाथ में कैसे हथौड़ी और ऐसे ठोक रहा है जैसे किसी चीज को ठोक रहे हो, परंतु उसके पास वो आर्ट है, उसके पास वो कला है। हम और आप ठोकने जाएंगे तो तोड़ देंगे हड्डी लेकिन वो उसको ठोक के ब्लॉकेज को खोलता है। और जो कहते थे मेरे घुटने में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, वो कहते दो तीन इस प्रकार से करवा के सेशन आराम से चल रहे हैं। तो सारा जो जड़ है बीमारियों का, रोगों का, ब्लॉकेज, और उस ब्लॉकेज को निकाल दो आप स्वस्थ हैं। शारीरिक रीति से ऐसे ही, मानसिक रीति से भी, रूह की रीति से भी। रूह तो कहा ना जैसे कुआं खोदने के पानी तो नीचे है, भरपूर है, लेकिन ऊपर में मिट्टी और पत्थर है, उसको हटा दो जरा तो पानी मिलेगा। इसलिए अभी ज्यादा काम किस पर करने की जरूरत है? ज्यादा काम किस पर करने की जरूरत है? क्योंकि हमने वर्षों से क्या अभ्यास कर रहे हैं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये अभ्यास है। लेकिन प्रैक्टिकल में मैं क्रोध स्वरूप हूं, मैं घृणा स्वरूप हूं, मैं उदास स्वरूप हूं। है ये बात सच्ची? सच्ची है ना? ये मिट्टी पत्थर उसके ऊपर है। जो कहा ना, कर्म जो हमने कर्तापन में किया है वो सारी परतें, ये है बोझ, इसको उतारने की जरूरत है। और यही कहा था भट्टी में, एकांत में बैठो, अपने आप से बातें करो, मैं हूं तो प्रेम स्वरूप। प्रैक्टिकल में आते आते मेरा प्रेम स्वरूप छूमंतर क्यों हो जाता है? और उस एकांत में ही बैठकर एक नया विजुअलाइजेशन करें, अब की बार स्थिति आएगी तो मैं पहले से, वो रिहर्सल की जाती है ना, जब किसी का परफॉर्मेंस होता है डांस का, गीत का, तो स्टेज पे आने से पहले पढ़ने के पीछे रिहर्सल चल रही होती है, तो हम भी रिहर्सल करें बैठकर। योग तपस्या भट्टी किस लिए थी? क्योंकि हमने क्या कहा, भट्टी में बैठना माना रूपांतरण करके जाना। तो कैसे रूपांतरण करोगे? यही रियलाइजेशन करनी है बैठकर, और वो विजुअलाइजेशन तैयार करने हैं। आज मैं ऐसी परिस्थिति आती है, मैं तुरंत ऐसा भड़क जाता हूं, लेकिन नहीं, ये मेरा स्वभाव थोड़ी है। तो मैं विजुअलाइज करूं ये परिस्थिति आएगी, मतलब आई है समझो, और मैं अपने शांत स्वरूप में इस परिस्थिति को हैंडल कर रहा हूं। इसके लिए एकांत चाहिए या कमेंट्रिया चाहिए? क्या चाहिए बोलो? अपने आप से। तभी तो कहा ना, मशीनों के आधार पे चल रहे हैं हम, सब भूल गया जो मालूम था। ऐसे सिर्फ कमेंट्रियों के आधार पे चलेंगे ना, उतना परिवर्तन नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। और इसलिए कमेंट्री अगर चल रही है, यहां पे कौन सी चल रही है? डायरेक्ट बाप दादा की चल रही है, क्योंकि बाप दादा तो सदा ही सच्चिदानंद है। तो जब वो चल रही है तो उसकी वो वाइब्रेशन भी हमको मिल रही है, वो पावर है उसमें जो हमें परिवर्तन के लिए प्रेरित कर देती है। मैं हूं पवित्र स्वरूप का मतलब क्या? अपवित्रता से रहित हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं का मतलब क्या? मैं घृणा से रहित हूं। मैं शांत स्वरूप हूं का मतलब क्या? मैं अशांति से रहित हूं। लेकिन मैं जब चेक करने जाती हूं तो मुझे दिखाई देता है, मैंने इसके साथ ऐसी अशांति खड़ी की, इसके साथ मैंने ऐसा नफरत किया, इसके साथ ऐसा किया, मतलब परतें चढ़ी हुई है, परते चढ़ी हुई है। लेकिन मुझे चाहिए सच्चित आनंद की स्थिति, तो थोड़ा सा मिट्टी हटाने की, थोड़ा सा पत्थर हटाने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोने को आग में डालना तो पड़ेगा, तभी तो जो व्यर्थ है, मतलब सोने के अलावा जो कुछ एलॉय है, वो जल जाएगा और सोना बच जाएगा। तभी तो योग तपस्या भट्टियों का आयोजन है कि तपोस योग अग्नि में बैठकर, कि जिस योग अग्नि में तप कर जो जो काम का है वो बच जाएगा और जो जो काम का नहीं है वो जल जाएगा। लेकिन तपे बिना नहीं हो सकता है। और तपना माना ही दुनिया के अंदर कहते हैं, क्योंकि बात एक्सरसाइज की है ना, तो दुनिया के अंदर एक्सरसाइज के नाम पे आसन, कोई सूर्य नमस्कार, सुखासन, मयूरासन, ये आसन, वो आसन, लेकिन अंत में शवासन। चाहे कितने ही आसन कर डालो लेकिन उस सेशन का एंड किससे होगा? शवासन से। क्यों? क्योंकि आसन करते समय भी कुछ ऊर्जा की खपत हुई है, लेकिन शवासन करके क्या करना है? जो खपत हुई है उसको फिर से गेन करो, जो सक्रियता आई थी उसको स्थिरता में थोड़ा सा परिवर्तन करो। और क्या होता है शवासन? जैसे मयूरासन, मयूर की तरह आपका पोज बनेगा, मत्स्यासन, मछली की तरह, ऐसे नामों से ही पता चल जाता है कि आप किस तरीके से हाथ पैर को हिलाओगे। लेकिन शवासन मतलब शव की तरह, और शव की तरह मतलब शरीर की भी मूवमेंट नहीं, मन बुद्धि की भी मूवमेंट नहीं, परंतु नींद भी नहीं, जागृति के पल। क्योंकि नींद में तो होता है, तो फिर शवासन और नींद में अंतर क्या हो गया? शवासन माना जागृति, और उस जागृति में मूवमेंट शरीर की भी शिथिल, मन बुद्धि की भी शिथिल। ऐसे ही जब भगवान हमारे रूहानी माशूक हमारे कहते हैं आशिको, समान बनो, समीप बनो, और उसके लिए रोज एक्सरसाइज करो, तो हमें एक्सरसाइज करना है जो कहा खुले में करो। तो यहां पर भी भगवान ने जो एक्सरसाइज बताई कहा ना, अभी अभी निराकारी, तो खुले का मतलब हम शरीर से निराकारी स्थिति में क्या होते, हम ये सब छोड़ के चले गए ना। जब ज्ञान में नहीं थे तो हमें पता था यही सब कुछ है, ज्ञान में आए तो पता चला इसके अंदर आत्मा है, तो ये एक से दो बना, पहले ये एक था तो ये मेरा शरीर, अभी ये शरीर और आत्मा। फिर ज्ञान में आगे बढ़े तो पता चला सिर्फ इतना ही नहीं, एक सूक्ष्म शरीर भी है। हाँ, तो ये अगर शरीर है तो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और इसके अंदर आत्मा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और ये सूक्ष्म शरीर किसका प्रतीक है? ये मन का प्रतीक है, ये मन का प्रतीक है। मन ही तो भागता दौड़ता है ना, ये मन का प्रतीक है। तो जब बाबा ने कहा कि अभी अभी निराकारी, माना मैंने सूक्ष्म शरीर भी छोड़ा, स्थूल भी छोड़ा, बाहर निकल के आ गई खुले में। कहा ना, खुले में आओगे तो ऑक्सीजन खूब मिलेगा, तो निराकारी स्थिति में परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगी तो खूब मेरा जो अपना सच्चिदानंद तो हूं ना मैं, लेकिन मिट्टी और पत्थर, तो ये टोटल इसी को ही हटा दिया, तो मैं क्या अनुभव करूंगी अपने आप को? उस आनंद की स्थिति में अनुभव करूंगी या नहीं करूंगी? अव्यक्त स्थिति, उसमें स्थूल छूटा है लेकिन सूक्ष्म है। साकार कर्मयोगी, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, परंतु कर्म योगी नाम डाला, कर्तापन का भाव नहीं, करता वो है. योगी कह रहे ना, योगी माना उससे मैं कनेक्ट हूं, तो करता तो वो है, वो करावनहार मुझसे करवा रहा है. तो ऐसे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ये परतें क्या होगी, हटेगी. और फिर कहा विश्व सेवाधारी. विश्व सेवाधारी में भी हम क्या करते हैं, आ जाओ ग्लोब के ऊपर. ऐसे तो कमरे के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन विश्व सेवाधारी का हमारा रूप क्या होता है, खुले में ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ. खुले में आ गए ना आप, तो जैसे का उस व्यायाम में खुले में आकर ऑक्सीजन भरते हैं तो सर्कुलेशन ठीक होता है, श्वासोश्वास की प्रक्रिया ठीक होती है. ऐसे ही जब ये वाली हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो आत्मा जो है ही सच्चित आनंद, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर माना मन माना चित्त जिसके ऊपर बोझ पड़ा है, क्या कहा बाबा ने, इस एक्सरसाइज से बोझ समाप्त होगा, परतें खाली हो जाएगी. तो इसका फोर्स इससे निकलता हुआ शरीर के एक एक अंग से व्यवहार जगत में, जिसके भी साथ में व्यवहार में होंगे उसको भी अनुभव होगा. और फिर कहा कि एक्सरसाइज करके शवासन से खत्म करो. तो इस रूहानी एक्सरसाइज को भी कहां खत्म करेंगे, क्योंकि समान बनो समीप बनो तो जाके बैठना पड़ेगा ना उसके पास. जाके पास में बैठने से कैसे हम स्वच्छ हो जाएंगे, कैसे स्वच्छ हो जाएंगे. और जाके बैठना है माना जैसे का शवासन में मन बुद्धि की भी स्थिरता, शरीर की भी स्थिरता, लेकिन जागृति की उपस्थिति होना चाहिए, ऐसे नहीं नींद में चले जाए. ऐसे ही जब परमधाम में हम चले जाएं, हम भी मन बुद्धि की स्थिरता में, बैठकर तो हम शरीर को स्थिरता दे ही देते हैं लेकिन मन बुद्धि को भी स्थिरता, दिल को भी स्थिरता. और जिसका दूसरे अर्थों में भाव है समर्पण भाव, उसके पास जाके बैठ जाऊं, अपने उस सत्य स्वरूप में, सच्चित आनंद स्वरूप में समर्पित. कोई विचार चलाने की आवश्यकता नहीं. आप कहेंगे मन का तो स्वभाव ही है विचार चलाना, वो तो हमको पहले दिन के लेसन में बताया गया था. लेकिन मन का स्वभाव जरूर है. अब जैसे हम बोलते हैं, बोल के बीच में गैप कितनी होगी ये तो हम बढ़ा सकते हैं ना. गानों में क्या होता है, गानों में बोल के बीच में गैप ज्यादा होती है ना, और जब बोलते हैं तो, इसलिए गाने का इफेक्ट कितना होता है, ज्यादा होता है या नहीं होता है. तो मन विचार जरूर करता है, लेकिन मन विचार करे ये विचार तो इसकी गैप को तो बढ़ा सकते हैं हम, इसकी गैप को तो बढ़ा सकते हैं ना. यही तो शांति की शक्ति है. तो ऐसा हमारा अभ्यास जैसे शवासन में हम कर रहे हैं इस शरीर के लिए, ऐसे परमधाम पे जाकर उसके करीब बैठकर अपने आप को समर्पित करने के बाद कोई विचार नहीं. जितनी देर तक एक विचार और दो विचार के बीच की गैप आप बढ़ा सकोगे, उतनी देर में क्या होने वाला है बोलो. उतनी देर में क्या होने वाला है, परमात्मा जो सदा ही प्योर है, वो अपनी वाइब्रेशन मेरी तरफ भेज कर मुझे अपने जैसा बना देगा. क्या करेगा, मुझे अपने जैसा बना देगा. और इसलिए कहा भगवान ने, तो सब कुछ मेरे पर न्योछावर कर दे, मैं तुझे सर्व पापों से। तो हमें एक एक पाप से मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक रियलाइजेशन कर लेना है और उसके करीब जाके बैठना है। एक वीणा एक कोने में रखो और एक वीणा दूसरे कोने में रखो, खाली स्थान में। संगीतज्ञों का अनुभव है, एक वीणा जिसको एक संगीतज्ञ ने उसकी तारों को छेड़ा, दूसरी को नहीं छेड़ा, परंतु दूसरी ने भी वही सुर पैदा कर दिया। कैसे? उस वीणा से जो स्वर लहरियां निकली, उसके वाइब्रेशन, क्योंकि खाली कमरा, कोई बाधा नहीं उसको, एस इट इज मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट होते होते उसके पास पहुंच के उसको टच कर दिया और उसमें से भी वैसा ही प्रकंपन निकला। तो परमात्मा कौन से प्रकंपन फैलाते हैं? उसके पास सिर्फ जाके बैठना है, वो अपने वाइब्रेशन से हमारे को क्या करेंगे, अपनी वाली फ्रिक्वेंसी पर लाके खड़ा कर देंगे। और इसके पीछे वैज्ञानिक तत्व भी है। एक बार एक राजा ने एक वैज्ञानिक को निमंत्रण दिया, जिस कमरे में उसको ठहराया उसमें दो घड़ियां लगी हुई थी दीवार पर, दो घड़ियां दीवार पर लगी हुई थी, एक बड़ी एक छोटी। हालांकि दोनों बड़ी थी, कंपैरिजन में एक बड़ी एक छोटी थी, बात 150-250 साल पहले की है, अर्थात पेंडुलम वाली घड़ियां थी। उसका जब ध्यान गया तो देखता है इन दोनों घड़ियों का समय डिट्टो, पेंडुलम की पोजीशन, सेकेंड काटा, मिनट का काटा, घंटे का काटा, सब एक ही जगह पर, ऐसे कैसे हो सकता है? अब वैज्ञानिक है, उसका माइंड चलने लगा। उसने क्या किया, रात को सोने से पहले एक घड़ी को बंद कर दिया, सुबह उठा तो दोनों में अंतर दिखाई पड़ा, फिर सुबह क्या किया, फिर से सेट कर दिया। पर सेट कैसे किया, 15-20 मिनट का अंतर रखा और उसने ये कोशिश की, देखता हूं क्या इतना अंतर होने के बावजूद भी ये फिर से सेम टाइम दिखाएगी। ये उसका रिसर्च था। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा 24 घंटे होते होते ही दोनों एक जैसा समय दिखा रही है, दोनों भी एक जैसा समय दिखा रही है। और उसने सोचा ऐसे कैसे, उसकी भी स्टडी की, आया था वहां पे एक दो दिन का मेहमान, लेकिन वैज्ञानिक था ना, जब तक उसकी धुन सवार हो गई कि मुझे पता नहीं चलेगा, मैं करके देखूंगा, कहते देर दो मास रुका रहा वहां पे और स्टडी की। क्या स्टडी की? रात को उसकी दीवार के पास, बड़ी वाली घड़ी के पास अपना कान टिकाता था और वो देखता था कि उस पेंडुलम के वाइब्रेशन निकलकर दीवार के थ्रू दूसरी घड़ी तक पहुंच रहे हैं और उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उसको अपनी ताल के साथ मेल करा रहे हैं। जैसे कि अगर समझो 5 मिनट आगे है, अगर वो घड़ी 5 मिनट आगे है और इसको मुझे अपने मेल पे ताल के साथ मेल बिठाना है, उसको 2.5 मिनट और इसको 2.5 मिनट, 5 मिनट हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो ये कंपन बड़ी वाली घड़ी के उसको कर रहे थे और इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, तालमेल का नियम, हार्मनी, और कहा गया कि ये तालमेल का, सिंक्रोनिसिटी का नियम सिर्फ वीणाओं पे नहीं, सिर्फ घड़ियों पे नहीं लागू होता, जीवन के हर आयाम में लागू होता है। शायद इसीलिए बाबा हमें कहता है, बच्चे परमधाम में आकर, सिर्फ मेरे पास आकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो ये हो जाएगा हमारा शवासन, और उस शवासन में हम एनर्जी भी गेन कर लेंगे और आत्मा की सफाई भी हो जाएगी, हम उसके समान और समीप बन जाएंगे। यही तो हमारे भट्टी का लक्ष्य है, न सिर्फ हमारे भट्टी का, ब्राह्मण जीवन का ही ये लक्ष्य है। ये हम क्यों इस ब्राह्मण जीवन में हैं? बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो शाम का टाइम है आपके पास, 5 से 6 का, ये एक्सरसाइज करना रूहानी, और रूहानी शवासन भी करना, और आप पाएंगे कितने भीतर से हल्के महसूस कर रहे हैं, कितने अंदर से एक तरोताजगी पैदा हो गई है, कितने अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। और तब हम पूरे नाच के साथ बाबा को कहेंगे, ओ मेरे रूहानी माशुक, हम आपके समान हैं, हम आपके समीप आ गए हैं। और उसको भी बड़ी खुशी होगी कि मेरे बच्चे भट्टी जिस लक्ष्य से करने आए हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति।